से इस भट्टी की शुरुआत करेंगे। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक युवा सन्यासी तपस्या करता था। बहुत ऊंचा लक्ष्य उसने शायद अपने अंदर धारण कर वह तपस्या कर रहा था, और जैसे जैसे दिन गुजरते थे उसकी वो तपस्या और सघन होती जाती थी। धीरे धीरे वो इतना लंबा समय तक तपस्या में रहने लगा, निराहार रहने लगा, रात्रि में भी लंबा समय जाग कर तपस्या करने लगा। तो जैसे शास्त्रों में हमेशा ही दिखाते हैं, जैसे ही नीचे कोई तपस्या करता है तो ऊपर स्वर्ग का देवता इंद्र उसका सिंहासन डोलने लगा। उसी जंगल में एक ऋषि पुत्री रहती थी जो कि थोड़ी कुरूप थी। तो इंद्र ने ऐसा कुछ किया कि वह जो स्त्री थी, जब जल भरने सरोवर में गई और जैसे ही पानी उसने अपने मुंह पे छिड़का, उसका स्वरूप बदल गया और वो बहुत रूपवती हो गई। सन्यासी उसी जंगल में तपस्या करता था। एक दिन उस स्त्री ने उस सन्यासी को देखा और उसकी ऐसी तपस्या देखकर उसके मन में आया कि इस तपस्वी की थोड़ी सेवा करनी चाहिए, और उस तपस्वी के लिए, परंतु उसे यह भी पता था क्योंकि वह ऋषि पुत्री थी और ज्ञानी थी, उसने सोचा मैं अपनी सेवा को गुप्त रखूं। और उसने गुप्त रूप से उस योगी की तपस्या आरंभ की। उस योगी के लिए जल लाकर रखती तो कभी फल लाकर रखती। योगी अपनी तपस्या में मगन था, उसे संसार का और संसार के भान का कोई ज्ञान नहीं था। आंखें खुलती थी सामने जल पाता था, पी लेता था। आंखें बीच बीच में खुलती थी फल पाता था, खा लेता था। और वह स्त्री हमेशा गुप्त रही। उसका लक्ष्य था कि उस योगी की तपस्या भंग ना हो जाए मुझे देखकर। परंतु एक दिन जो नहीं होना था वो हो गया। जब वो जल रख रही थी तो अचानक योगी की आंख खुली और उस तपस्वी ने उसे देख लिया, और जैसे ही देखा फिर से उसने आंख बंद कर ली। वो स्त्री वहां से चली गई और आत्मग्लानी से भर गई कि शायद मैंने उस तपस्वी की तपस्या भंग कर दी। परंतु अंदर ही अंदर उसे खुशी भी थी कि उस तपस्वी ने मुझे एक बार देख तो लिया। परंतु आत्मग्लानी का भाव अधिक था और उसने सोचा कि मैं अब यहां से चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और वो स्त्री वहां से चली गई। तपस्वी अपने तपस्या में मगन था। धीरे धीरे तपस्या और गहन होती गई। उसके शरीर पर जैसे एक पहाड़ खड़ा हुआ, बाह्य जगत का बोध उसे नहीं रहा। और ऐसी जब उस तपस्या की अवस्था हुई तो इंद्र स्वयं प्रकट हुए और उस तपस्वी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए? मैं तुम्हें स्वर्ग देने के लिए भी तैयार हूं। उस महायोगी ने आंखें खोली और कहा कि मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं। इंद्र को आश्चर्य हुआ और आंतरिक हर्ष भी कि यह स्वर्ग के लिए योग भट्टी में जितने भी मोबाइल आज के दिन ऑन है, सबसे पहले तो उसे बंद कर दिया जाए। डिजिटल डिटॉक्स, सुबह कहा था, कनेक्ट करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्ट करना होगा। तो आज के दिन बाह्य जगत, संसार के लोग, संसार का कारोबार एक दिन के लिए बंद, ताकि हम अपना संपूर्ण ध्यान तपस्या में लगा सके, ब्राह्मण जीवन की इस राह में चलते चलते लक्ष्य कभी कभी खो जाता है। मुरली सुनना, सुनाना, अमृत वेला करना, सब कुछ साधारण सा हो जाता है। इसके लिए बीच बीच में गहन तपस्या की आवश्यकता है, गहन आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्म अवलोकन। हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन। सिंह जो होता है, जो पीछे जब चलता है तो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता है। स्वयं स्वयं को देखना, इस प्रक्रिया का नाम इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सिंहावलोकन। तो हम सभी को कम से कम आज के दिन संपूर्ण दिवस जो बातें यहां सुनाई जाएगी, उन बातों को सुनते सुनते और बातों के बीच में जो वाक्य है और उन वाक्यों के बीच में जो अंतराल है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उस अंतराल में स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं को देखना है, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना है। फिर से उसी सन्यासी की तरफ, इंद्र सम्मुख खड़ा है, पूछ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? किस कामना से, किस अभिप्सा से, किस इच्छा से यह तपस्या कर रहे हो? इंद्र कहता है, मैं तुम्हें मोक्ष देख सकता हूं, कैवल्य मेरे हाथ में है। वो सन्यासी कहता है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इंद्र आश्चर्य विभोर, अब क्या दू, क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी कामना है तुम्हारे मन में? क्यों ऐसी तपस्या कर रहे हो गहन? किस लक्ष्य से? वो सन्यासी कहता है, वो स्त्री कहां है? वासनाएं मन में छिपी है, सर्व वासनाओं से मुक्ति क्या यह संभव है? क्या मन ऐसी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है कि जहां पर देह और देह का आकर्षण और संसार की वस्तुएं और संसार का सौंदर्य चित्त को डावाडोल न करे, या मन में ऐसी इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाएं छिपी बैठी है? आज बाबा ने कहा है, आशिक माशुक बन जाते हैं, एक दूसरे पर लटकते हैं, लट्टू हो जाते हैं। क्या ऐसी अवस्था भी प्राप्त हो सकती है जिसमें वह निर्लिंग आत्मा के अतिरिक्त यह देह दिखाई ही ना दे? वह तपस्या जो ब्रह्म के आचरण की ओर ले चले, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात वह आचरण जो ब्रह्म ही स्थिति में हो, ब्रह्म ही स्थिति का अनुभव, ब्रह्म लोक में जो आत्मा है उस स्थिति का अनुभव अर्थात ब्रह्मचर्य। एक परिभाषा, दूसरी विकारों से संबंधित सर्व विकारों से मुक्ति ब्रह्मचर्य, तीसरी काम से मुक्ति संपूर्ण काम विकार से मुक्ति, चौथी जो बाबा ने मूल्यों में दी है और कहा है यही वास्तव में ब्रह्मचर्य, वो है ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा के कदम पर कदम रखना। वो वास्तव में पवित्रता की परिभाषा है, परंतु आज की क्लास में हम पवित्रता की चर्चा न करके पवित्रता की चर्चा हम कल करेंगे, जो कल की मुरली है संडे की, संपूर्ण पवित्रता के ऊपर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य की, और ब्रह्मचर्य की वह परिभाषा, क्योंकि यहां सभी भाई और अधिकतर कुमार भी है, तो विशेष रूप से कुमारों के लिए। क्या है ब्रह्मचर्य? क्या गुह्यता है इस ब्रह्मचर्य की? कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और कैसे इस दिव्य को श्रेष्ठ, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए? कैसे इस देह में दौड़ती हुई वह ऊर्जा जो नीचे बहने को आतुर है, कैसे उस शक्ति को, कैसे इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाया जाए? ऊर्ध्वागमन कैसे हो उस शक्ति का? शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता योगी की चर्चा है, अर्थात जहां काम की शक्ति ओजस में परिवर्तन हो चुकी है, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का मूल आधार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, केवल एक मात्र भाग है उसका। पवित्रता की तो बहुत बड़ी परिभाषा है, कई सारी अव्यक्त वाणियां पवित्रता पर है, गुह्यता पर। वो एक बहुत बड़ा विषय है, जहां पर संकल्प स्वप्न भी पवित्र, साधारण संकल्प भी अपवित्रता यहां तक बाबा ने परिभाषा दी है, परंतु ब्रह्मचर्य की यह जो इमारत है, यह जो भवन है, उसका आधार जो है वो ब्रह्मचर्य है। यदि ब्रह्मचर्य को हटा दिया जाए और बाकी सब कुछ है तो पवित्रता नहीं हो सकती। शरीर बूढ़ा होता है परंतु विकार क्या होते हैं? जवान। अजरता जैसे उनका स्वभाव है। तो क्या इस ब्रह्मचर्य को पाया जा सकता है? क्योंकि शास्त्रों ने और संतों ने और संसार के महापुरुषों ने अधिकतर इसे असंभव समझा है। सारे समुद्र के जल को पिया जा सकता है परंतु काम को नहीं जीता जा सकता। हिमालय पर्वत को उठाया जा सकता है परंतु काम को नहीं जीता जा सकता है। पागल हाथी को परास्त किया जा सकता है, एक विषधर नाक का विष निरस्त किया जा सकता है, परंतु काम को नहीं जीता जा सकता। ऐसा महानात्माओं ने और शास्त्रों ने अलग अलग जगह पर कहा हुआ है। और भगवान इस संसार में किस लिए आया है? एक ही कर्तव्य करने के लिए, पतित को पावन बनाने। यही वास्तव में उसका एक ही कर्तव्य है। आत्मा सतो प्रधान थी, पतित कैसे बनी? केवल एक विकार के कारण। काला मुंह ये क्रोध के लिए नहीं कहा जाता, पांचवी मंजिल से गिरना ये क्रोध के लिए नहीं कहा जाता, क्रोधी को, लोभी को, मोही को और अहंकारी को पतित नहीं कहा जाता, जो काम से ग्रसित है उसे पतित कहा जाता है। और इस विश्वविद्यालय का यह प्रथम विषय है, संपूर्ण पवित्रता। बाबा के पास कई लोग गए थे जब कराची में हंगामे हो रहे थे कि बाबा आप इस पवित्रता को की बात को करो ही नहीं तो यह संस्था बहुत बड़ी हो जाएगी, पवित्रता को थोड़ा बाहर कर दो। तो बाबा का क्या उत्तर था पता है किसी को? बाबा ने क्या कहा था? लोगों ने सजेस्ट किया था कि पवित्रता को हटा दो, इसके ऊपर चर्चा ना करो, इसका उल्लेख ही नहीं करो, लोग नाराज होते हैं, बिगड़ते हैं। यज्ञ पर जितने विघ्न आपदाएं आई किस वजह से आई? इसी एक के वजह से। बाबा ने कहा मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, दहाड़ लगाने वाली सिंहनी शेरनी, दहाड़ लगाने वाले शेर चाहिए। तो जो इस व्रत का पालन करते हैं वह साधारण नहीं है, और जिन्होंने इसको जीता है या फिर इससे ऊपर निकल गए हैं वह भी संसार की साधारण आत्माएं नहीं है, और वो आत्माएं हम हैं। आज के इस आधुनिक युग में अंधकार है, तिमिर है, ना तो यहां ज्ञान है, ना तो योग है, ना कोई धारणाएं है, हर मन में वासना भरी हुई है, हवाओं में वासनाएं हैं, विकार है, हर उपन्यास, हर टीवी चैनल, हर पिक्चर, मूवी, मीडिया, सब जगह पर केवल काम का राज्य छाया हुआ है। हर मन में वही वासनाएं भरी पड़ी है, कोई भी इससे मुक्त नहीं। अगर गहरे में झांक कर देखो तो ऊपर से जो बातें चल रही है एक तरफ, परंतु अंदर में वही विकार। यदि किसी और ग्रह से व्यक्ति आ जाए तो उसे आश्चर्य होगा मनुष्य को देखकर कि ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, परंतु अंदर में वही विकार भरा पड़ा है और इस ब्राह्मण जीवन में भी यदि वो संघर्ष और इस कुमार जीवन और इस योगी जीवन में वही संघर्ष अब तक चल रहा है तो हम इस जीवन में उस धन्यता को और उस भव्यता को कब प्राप्त होंगे। एक मां अपने बच्चे से पूछती है कि उसकी छोटी बहन और वो दोनों खेल रहे हैं, मां कहती है कि तुमने फिर से लड़ाई चालू कर दी। बच्चा कहता है मां नहीं, ये वही पहली वाली लड़ाई जारी है। क्या हमारी भी वही पहली वाली लड़ाई अब भी जारी है? यदि द्वंद में ही जीवन बीत जाए तो कब उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे? तो आज हम जिसे संसार ने असंभव समझा है उसे कैसे संभव करें उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे कहा कि यह जो शक्ति है अगर नीचे बह जाए तो देह को जन्म देगी, अगर ऊपर बहे तो एक असीमित बल का रूप धारण करेगी, तेज का रूप धारण करेगी और यही पवित्रता का बल। शास्त्रों में वर्णन है चक्रों का, ऐसे कोई स्थूल चक्र तो नहीं है परंतु मूलाधार से उठकर वह शक्ति ऊपर 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 और सहस्त्रार तक चली जाए। नीचे के तीन चक्र नीचे की ओर बहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर के चार चक्र लॉ ऑफ ग्रेस। अधिकतर मनुष्य नीचे के तीन चक्रों में ही जीवन बिता देते हैं, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, बस इसी में सारा जीवन बीत जाता है। काम, धन संपत्ति, भोजन, बस यही जीवन है, यही जीवन समाप्त। कैसे हम इन तीन चक्रों को पार कर अनाहत तक पहुंचे और कैसे ऊपर के चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित हो जो आज्ञा से सहस्त्रार तक चली जाए, यह ब्रह्मचर्य की कला है। ऐसा नहीं कि पवित्रता की चर्चा आज तक किसी ने की नहीं, सभी ने की है, और ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए ही असंभव था, संभव था, कई आत्माओं ने यह किया भी है। शास्त्रों में इतिहास में ऐसे व्यक्तियों का नाम आज भी प्रसिद्ध है। तो जिसे संसार ने असंभव समझा उसे हम संभव कैसे करें? इसकी चार स्टेप्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। यह जो काम की ऊर्जा है इसको रूपांतरित करना है सबसे पहला कंट्रोल, नियंत्रण, दूसरा कंजर्व, संरक्षण, तीसरा डाइवर्ट और चौथा सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, सब्लिमेशन। तो यह जो ऊर्जा है, द सेक्सुअल एनर्जी शुड टर्न इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी, इसकी क्या विधि है उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला कहा कंट्रोल, नियंत्रण, संयम। बिना संयम के यह शक्ति इतनी प्रचंड है, जब तक कुछ धारणाएं नहीं हम बना लेते जीवन में इसे वश में नहीं किया जा सकता है। लोगों ने इसे वश में करने का प्रयत्न किया, परंतु दमन के द्वारा इसे दबाया, शरीर को यातनाएं पहुंचाई, पीड़ा दी, परंतु हुआ क्या? दबती है ये? क्या दब सकती है? ये नदी की तरह है, प्रचंड वेग है उसका, उसे मोड़ा जा सकता है। रोकने का प्रयत्न करो तो क्या कर देगी? नष्ट कर देगी एक दिन। जिस जिसने इसका दमन किया और सारे संसार भर में जितने भी पागलखाने हैं और वहां पर जो भी स्टडीज की गई है, पाया गया है जितने लोग विक्षिप्त हुए हैं, उसमें से अधिकतर इसी काम और कामुक वासना को दमन के वजह से पागल हुए हैं। जब तक इसे समझा न जाए तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, परंतु वंस मोर की कामना लेकर मरता है, और फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जठरे शयनम, वही कामना अगले जन्म में फिर प्रकट होने लगती है। तो कंट्रोल अर्थात सप्रेशन और रिप्रेशन नहीं, दमन नहीं, कंट्रोल करेंगे कुछ धारणाओं से। बाबा ने मुरलियों में पवित्रता की बहुत गहराई से चर्चा की है, परंतु ब्रह्मचर्य का विषय हमारे चिंतन के लिए छोड़ा है, जिसकी बहुत बार चर्चाएं साकार मुरलियों में आती है, आज की मुरली में भी है, बहन भाई की दृष्टि। परंतु मुरलियों में कभी ये भी आता है कि इस दृष्टि में भी विकार आ सकता है, और इस ज्ञान में चलने वाले अगर कोई विकार में चले जाए, एक साकार मुरली है कि उससे कह दो कि एक साल के लिए अपना मुंह ना दिखाए। साकार मुरलियों में बातें आई है, कुछ कुछ है जो विकार में जाते हैं और सभा में आके बैठते हैं, ये इंद्र सभा है, जो लेके आया और जो विकार में जा रहे हैं, उन दोनों को भी पश्चाताप करना पड़ेगा, बोझ दोनों पर है। ये सारे साकार मुरलियों के महावाक्य है। तो कंट्रोल में कुछ आठ बातें हैं, इनका अगर पालन करे तो इस आधुनिक युग में, जैसे हम कह रहे थे आधुनिकता का तिमिर है, यहां पर विकार ही विकार है, कोई भी चैनल खोलो विकार, और मन में जो दबा है उसको केवल एक चिंगारी, एक फिलिप, एक स्टिमुलस की आवश्यकता है। वो स्टिमुलस आया और वो निकल आया। क्यों इतने विकर्म और कुकर्म हो रहे हैं? पूछो उन लोगों से जाकर जिन्होंने पाप किए हैं, किसी के साथ कुकर्म किए हैं, वो आज भी पश्चाताप में है। कहते हैं कि उस समय क्या हुआ पता नहीं, इतना एक्साइटमेंट का वो फेज था कि वो पाप हो गया, परंतु अब पश्चाताप। क्षणिक कहां से आया? पर वो स्टिमुलस बाहर से आया, वो हो सकता है कोई किताब, कोई वीडियो, कोई फिल्म, कोई पोस्टर, मित्र, कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले आठ बातें यहां पर है, जिसे कहा गया है कि ये आठ बातें अगर है तो ब्रह्मचर्य हो नहीं सकता। यदि ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना है, यदि अखंड ब्रह्मचारी बनना है, बाबा ने कभी बहनों के लिए कहा है सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, हाथ में मुरली हो और वाणी चलती रहे, तुम हो राज ऋषि। तो ऐसे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों की सभा ये है, और ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का यदि पालन करना है तो वो सारी आठ बातें त्यज है। विवेकानंद ने कभी कहा था कि मुझे ऐसे 100 ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है, 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड, तो मैं इस संसार को बदल दूंगा। सबसे पहला दर्शन, दूसरा स्पर्श, तीसरा कीर्तन और चौथा केली। सबसे पहला दर्शन, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को अपनाने वाले हम ही संसार में पहले नहीं है, द्वापर से कईयों ने, युवक और युवतियों ने इसको अपनाया है, और पाया गया है कि जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं व्यक्ति अपनी वासना को देखकर तृप्त करता है, क्योंकि नियमों में बंधा है और वासना वैसी ही है, एक दूसरों को देखकर। और बाबा ने इसके लिए उपाय बताया है, ये देह को देखो ही नहीं, इसे विष समझो। 69 की मुरली, वह जो सांप है उसको वो यदि काट ले तो बचाया जा सकता है आईसीयू में, परंतु देह रूपी सांप यदि काट ले तो मुश्किल है। इस देह को देखो ही नहीं, इस देह में विष है और सांप में विष होता है, अव्यक्त महावाक्य। इसलिए देखना, देखना है तो केवल आत्मा को, कहीं लिखा है कि एक सन्यासी यदि चलते चलते किसी स्त्री को सामने आ जाए और वो एक बार देखता है तो वो स्वाभाविक है, परंतु उसे दूसरी बार देखने की इच्छा होना, वो उसका दूसरी बार देखना यह इच्छा है और उसी को तीसरी बार देखना यह वासना है। बाबा ने कहा है आंखें सबसे ज्यादा धोखा कौन देती है, आंखें। लोगों ने आंखें निकाल दी, परंतु जो जन्मांध है, जिनको आंखें ही नहीं है बचपन से, उनमें भी विकार उतना ही होता है प्रबल। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार है, आंखों की आवश्यकता नहीं उसके लिए, वो है वहां पर दर्शन। सभी कुमार और सभी भाई जब भी किसी को देखे, स्त्री को, तो क्या दिखाई दे, किस रूप में देखे, सबसे पहला तो आत्मा मुश्किल काम है, आत्मिक दृष्टि एक साधना है। दूसरा क्या देखे, देवी देखे, मंदिर की देवी। सोचो यदि कोई दुर्गा मां के मंदिर में कोई पुरुष जाए और उसके मन में विकार की भावना हो तो उसे कैसा लगेगा, उसे खुद ही आत्मग्लानी हो जाएगी, और वो बात यदि उस पुजारी को और बाकी लोगों को पता चल गई तो क्या करेंगे उसका। हर एक में देवी देखना, बहन देखना, शक्ति देखना। एक तरफ तो संसार की स्त्रियां है और दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमारियां। जो ब्रह्मा कुमारियां है वह स्वयं शक्ति स्वरूपिना है, स्वयं शक्ति का अवतार है इस धरती पर। इसके लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। और एक भाव है मां। बाबा ने कभी मुरली में कहा है इस भाव में कभी भी विकार नहीं आ सकते। जगन माता, जगत माता, साक्षात जगत जननी देखना उसको। बाबा ने मुरलियों में कुमारियों से मुलाकात और टीचर्स से मुलाकात, कितनी मुरलियों में बहनों को टाइटल्स दिए हैं, तुम जगदम्बा हो, जगत की पालना करने वाली है वो। तो दर्शन, यदि पता है कुछ देखने से ही हमारी दृष्टि खराब हो रही है, सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको स्टॉप कर देना। पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा, त्याहुना आंधड़ाज बरामी। संतों ने कहा है पाप की वासना मुझे नहीं दिखाओ, उससे तो मैं अंधा ही ठीक हूं। तो क्या हम देख रहे हैं और किस भाव से देख रहे हैं, एक। दूसरा स्पर्श, टच, वह सारे सुख जो टच से उत्पन्न होते हैं, जहां इंद्रिया इंद्रिया से मिलती है, अंततोगत्वा दुख में परिणित होते हैं। गीता में लिखा है एक जगह, वो सारे सुख जो टच बॉर्न है वो एक ना एक दिन अथाह दुख के कारण बनते हैं। इसके लिए स्पर्श करने की कामना क्या है? इस देह में मल मूत्र मच्छा हड्डी मांस, क्या इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ है? कहां है सौंदर्य उस मृत देह का? कहां है सौंदर्य? जाओ जाओ कर देखो जनरल वार्ड हॉस्पिटल में कैसे लाइन लगी है पेशेंट्स की, कहां है वो सौंदर्य? भ्रांति मात्र है, जो दिखाई दे रहा है ये सुंदर है, सौंदर्य वहां नहीं है, भ्रम है, देहभान है। इस मिट्टी में कैसा सोना? क्या ये मिट्टी भी कभी सुख दे सकती है? ऐसा होता तो वो राजाएं सुखी होते जो भोगी और विलासी थे। शास्त्रों में वर्णित वो ययाति राजा इतना भोग कर भी अतृप्त ही रहा। वासनाओं का एक स्वभाव है, वासनाओं का एक नेचर है अतृप्ति। महात्मा बुद्ध ने कभी कहा है इच्छाएं दुष्पूर है, दुष्पूर अर्थात कभी न भरने वाली, कभी भी शांत नहीं होने वाली। भास हो रहा है, भ्रम होता है और तुरंत फिर से वही दुख, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन। दर्शन तीसरा कीर्तन, कीर्तन अर्थात प्रशंसा करना। ये बहन बहुत अच्छी है, साकार मुरली महावाक्य, ये बहन बहुत अच्छी है बाबा, ये बहन बहुत मीठी मुरली चलाती है। बाबा का क्या उत्तर है इस वाक्य के लिए? अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। अंदर ही अंदर किसी की प्रशंसा करना, अंदर ही अंदर दूसरों के सामने, मित्रों के सामने एक ही व्यक्ति की प्रशंसा करना, बस यही चाहिए। यह ब्रह्मचर्य की को भंग करना है, यही सबसे अच्छी है। दादी जान की हमेशा एक अनुभव सुनाती है कि जब किसी का एक बहुत बड़े वीआईपी का दादी ने कोर्स कराया और दादी बाबा के पास गई और बाबा को कहा, बाबा वो भाई बहुत अच्छा है जिसका मैंने कोर्स कराया ना, उसको एकदम तीर लग गया है बाबा, उसको सारी बातें एकदम समझ में आ गई है, वो भाई बहुत ही अच्छा है। तो बाबा चुप बैठे थे और लास्ट में कहा, तीर उसको लगा या तुमको? प्रभावित हो जाना आत्माओं से। आज के मुरली में वरदान है, कहीं पर भी आकर्षण नहीं, किसी भी सहारे का आकर्षण नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, किसी एक बाप में ही संसार। जो आत्माएं बाप से जुटी हुई है और बाप उनसे जुटा हुआ है, वो जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते। ना तो बाप उनसे अलग होता है, ना वो बाप से अलग होते हैं। तो तीसरा कहां से आया? कीर्तन। चौथा केली, संस्कृत शब्द है केली अर्थात खेलना, सहवास, साथ साथ खेलना। कॉलेज में जाकर देखो, युवक और संसार के युवकों को जाकर देखो, वो फ्रीडम समझते हैं, राइट समझते हैं, परंतु कैसे कैसे कुकर्म वहां हो रहे हैं। यह खेलना, परंतु एक दूसरा सूक्ष्म रूप भी है इस खेलने का। एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से, एक व्हाट्सएप इधर से और दूसरा व्हाट्सएप उधर से, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप तथा कथित आध्यात्मिक मैत्री। किस लिए? एक दूसरों की उन्नति के लिए, पवित्र प्रेम जिसे कहते हैं। परंतु सूनर और लेटर ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप कहा गया है। इसलिए सावधान। पांचवा, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कन्वर्सेशन। बस वही व्यक्ति चाहिए और उसी से बात करना है और उसी से चैट करनी है। ये सारा ट्रिमेंडस इमोशनल डिस्टर्बेंस की ओर ले जाता है आत्मा को, शक्ति को नष्ट करता है। पैसे, शक्ति, समय, सबको नष्ट करने वाला है। पांचवा, संकल्प, सेक्सुअल फैंटेसीज, कल्पनाएं, सहवास की, कहां से जन्म देती है ये सारे चैनल्स। एक व्यक्ति था, उसे नींद नहीं आती थी। जब भी सोता था तो उसको एक ही स्वप्न दिखता था, उसके खटिया के नीचे बहुत बड़े बड़े राक्षस। कई सारे हॉस्पिटल में गया, कईयों को दिखाया, पर कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया। और जब भी सुबह उठता था तो उदास, क्योंकि इतना भयंकर स्वप्न उसे दिखते थे कि खटिया के नीचे बड़े बड़े राक्षस, अजगर, सांप, भयभीत, धड़धड़ धड़धड़ करके उठता था रोज, धड़कने तेज। तो लोग भी कहते थे क्या करे इसके लिए, कोई इलाज काम नहीं करता है, कोई दवा काम नहीं करती। और एक दिन ऐसे हुआ कि उसका कोई भाई आ गया दूर का। उस रात वो सोया और सुबह एकदम आनंदित और प्रसन्न जैसे ही घर से बाहर निकला, लोगों ने कहा आज क्या हुआ, इतने खुश क्यों? उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। किसी ने कहा कैसे, रोज तो तुमको क्या क्या दिखता था, सांप, अजगर, राक्षस, आज नहीं दिखे? वो कहता नहीं, मेरा भाई आया, उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। क्या बीमारी ठीक कर दी, क्या होगी, क्या किया होगा भाई ने, कोई गेस? कैसे ठीक कर दी, कोई भी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया बीमारी को। आपके साथ मैं हूं ना, अच्छा, और सभी बताएंगे क्या हो सकता है उत्तर। पीछे से बहनों की तरफ कोई, वो कहता है मेरा भाई कारपेंटर है, खटिया के चारों पैर काट दिए उसने। अब कैसा स्वप्न और कैसा क्या, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चार है। इसको यदि काट दिया जाए, है बहुत आवश्यक, जरूरी है, परंतु कब वो जरूरत विकार की ओर ले जाए इसका भी भरोसा नहीं है। क्या हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवी, ये मोबाइल और ये इंटरनेट, इंटरनेट का वो जगत, एक क्लिक और ब्राह्मण से शूद्र, इतनी ही देरी है क्लिक की, केवल बटन की। कितने ही कुमार, अच्छे अच्छे कुमार, पावरफुल कुमार, दूसरों को लाने वाले कुमार आज है नहीं, एक से दो और दो से चार हो गए हैं। और कहते हैं ये बच्चे भी शिव बाबा के ही है। तो संकल्प, सातवां अध्यवसाय, समीप जाना एक के बाद एक। पहले चार अगर हो जाए तो आगे के चार होने में समय नहीं लगेगा। और अंतिम क्रिया, एक्ट। आठ अनुच्छेद ब्रह्मचर्य के हैं। पहला, देखना, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन, केली, गुह्य भाष्य, संकल्प, अध्यावसाय और क्रियानिवृत्ति। अगर ये आठ चीजें हर समय ना हो, हर स्थान पर ना हो और हर परिस्थिति में ना हो, तो उसे अखंड ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ऑल सिचुएशंस, ऑल प्लेसेस, all time, all situation, all places, all time. यदि इसका पालन हो तो वो अखंड ब्रह्मचर्य है. तो पहला पॉइंट था कंट्रोल, संयम. महादयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था कभी, क्या आपको काम विकार परेशान नहीं करता है? तो उन्होंने दिया था, करता है, रोज आता है, परंतु मैं इतना व्यस्त रहता हूं अपने काम में कि वो रुक रुक के चला जाता है. यदि हम निरंतर व्यस्त है तो ये सब चीजें कभी नहीं होगी. हम यहां पर पवित्रता की बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, परंतु उसका जो मूल ये ब्रह्मचर्य, उसकी शायद बहुत कम चर्चा है या फिर है ही नहीं. तो पहला था कंट्रोल और दूसरा है कंजर्व, शक्ति को जमा करना. तो दूसरा पॉइंट है कंजर्व, स्टोर. इसमें कुछ मुख्य बातें हैं. सबसे पहले तो संघ, हमारा संघ कैसा है, किन दोस्तों के साथ, किन मित्रों के साथ, किन आत्माओं के साथ, किन व्यक्तियों के साथ हमारा संघ है. यदि वो सारे व्यक्ति विकार से ग्रसित है तो हमारा भी विकार की ओर आकर्षण होगा. फिर ये संघ जो है, ये जरूरी नहीं वो व्यक्ति यही है, कहीं दूर भी हो सकता है, परंतु उन सभी व्यक्तियों से यदि हमारी मैत्री है तो अध्यात्म के इस मार्ग पर हम नहीं बढ़ सकते. बैड कंपनी, जितने विकर्म होते हैं, सामूहिक विकर्म क्यों होते हैं? इसी के कारण. किस कंपनी में वो है, विकार संक्रामक है, एक से दूसरे की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगता. दूसरा वैराग, वैराग की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु यदि राग बना हुआ है देह के प्रति, ये देह में कुछ आकर्षण है, अभी भी लगता है बहुत सुंदर है, तो यह राग ही घसीटते हुए ले जाएगा नीचे. इस संसार को असार समझना और देह को मिट्टी समझना इक्वल टू वैराग. वैराग की यदि एक वाक्य में परिभाषा कहो तो संसार असार और देह मिट्टी, इसी को वैराग समझा जाता है. इसी को गहराई से समझना कि संसार में जो कुछ है सब कुछ असार है. यहां पर है, ऐसे नहीं कि इसको छोड़कर गए, यहां पर है, सब कार्य कर रहे हैं, परंतु फिर भी संसार असार है. धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली में, सबको वापस जाना है. यहां मेरा कुछ भी नहीं है, विस्मृति हो गई है, करके दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं संसार में. ना तो ये घर, ना तो ये पति, ना तो ये पत्नी, ना तो ये बच्चे, ना तो ये मां बाप, ना ये घर, ना ये ऑफिस, ना ये चेयर, ना ये सम्मान, ना ये पद, ना ये प्रतिष्ठा. योगियों ने इस संसार को स्वप्न से तुलना की है, स्वप्नव्रत है सब कुछ, भास रहा है नहीं, भास है केवल, केवल भास. हम सोचते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम अगर चले जाए तो क्या होगा, इस ऑफिस का क्या होगा, इस हॉस्पिटल का क्या होगा, इस कंपनी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा. शायद हम ही बोझ हैं, हम ही बाधा है, ये हमारा ही भ्रम है कि इनका क्या होगा. वो तो इंतजार में है, अप्रकट अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य है यहां पर सब कुछ, सुख कहां, असुख है यहां पर. इस संसार को देखते हुए भी न देखो, जो कुछ इन आंखों से देखते हो, आंखों सहित साकार महावाक्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो आंख देख रही है वो भी, इसके लिए वैराग। संसारी व्यक्ति के कानों में यदि वैराग शब्द कहो तो भागता है दूर, उसको बहुत अप्रिय शब्द है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे शब्द, सन्यास, वैराग। बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम वैरागी हो, बुद्धि सहित सारी दुनिया से तुम्हें वैराग है। क्या बिना वैराग के ब्रह्मचर्य की साधना हो सकती है? कभी नहीं। तो पहला संग, दूसरा वैराग, तीसरा आत्मिक दृष्टि, सभी को एक ही आत्मिक दृष्टि से देखना और इसकी साधना करना। एक दिन का काम नहीं है ये, बस सोच लिया मैं आज सारे दिन भर आत्मा देखूंगा। चौथा भोजन, सभी कुमार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार है। भोजन कहां से आ रहा है, किस पैसों से आ रहा है, कहां बनाया जा रहा है, किस अवस्था में बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है और खाते समय मन की स्थिति क्या है, सब कुछ प्रभावित करता है। यदि क्रोध की अवस्था में भोजन खाया जा रहा है तो वो भी मांसाहार ही है, क्योंकि क्रोध की अवस्था में शरीर जल रहा है तो वो भी नॉनवेज ही है। दुखभंजक 1985 ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा ने कहा है। चौका, हिंदी में चौका कहा जाता है रसोई को। एक, कैसा कहां से आ रहा है भोजन, एक नंबर, दो नंबर, किसी को पीड़ा देकर, किसी को दुख देकर, किसी का पैसा छीन कर कहां से भोजन आ रहा है, किसी को लूट कर, रिश्वत से, चारों में से कोई भी एक बात है तो वो भोजन बल नहीं बनेगा। दूसरा जाति दोष, भोजन में जाति दोष, कौन सी चीजें हैं वो, लहसुन प्याज और नॉनवेज तो सारा चला गया, पर अभी हमारे पास है, हम कहते हैं मशीन मेड है। क्या मशीन अपने आप चलती है क्या, कि कोई चलाने वाला भी है? तो चलाने वाला है अगर मशीन को, ये तो मशीन को वो चलाए या खुद बनाए, एक ही तो चीज हो गई, पर हमें तो सब चल जाता है। भोजन बनाने वाले की अवस्था कैसी है, भोजन बना रहा है परंतु अवस्था कैसी है मन में, यदि उसके मन में व्यर्थ है और निगेटिव है तो वही घुसेगा उसमें। चौथा खाने वाले की अवस्था कैसी है, किस भाव से खा रहा है, या कंप्लेंट का भाव है, इसमें ये कम है, उसमें नमक नहीं है, उसमें मिर्च कम है, कल भी यही था आज भी यही, निगेटिव भाव है, किस भाव से उसे स्वीकार किया जा रहा है, क्या स्वमान की अवस्था है, क्या धन्यवाद का भाव है, अहोभाव है, वह कृतज्ञता का भाव है, अगर ये नहीं तो वो भोजन भी शक्ति नहीं बनेगा। क्या धन्यवाद देते हुए स्वमान में स्थित होकर स्वीकार किया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि ब्रह्मचर्य की अखंड साधना जो करते हैं उनका भोजन भी बहुत गरिष्ठ ना हो, सादा हो। जगदीश भाई ने कहीं लिखा है अपनी किताब में, थोड़ा 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 और थोड़ा और थोड़ा और करते करते एक दिन हथौड़ा लग जाता है, निकलते हैं उधर से करते हुए, जब तक ऐसी आवाज नहीं निकलती उनको लगता ही नहीं भोजन हो गया, इतना उसमें तीखा। तो भोजन, एक भोजन, एक वैराग, एक संग, आत्मिक दृष्टि, और है संग में भी एक तो दो भाग है उसमें, एक कुसंग ना हो और सत्संग हो, महान आत्माओं का, तपस्वियों का संग हो, ऐसी आत्माओं का संग जो स्पिरिचुअल कैलिबर जिनका हमसे ज्यादा हो, जो हमको खींच ले ऊपर, जो इस पथ पर, पवित्रता के मार्ग पर बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसी आत्माओं का संग करना। तो दूसरा पॉइंट था कंजर्व। थर्ड पॉइंट है डाइवर्ट। एनर्जी जो है, नदी जो है बही जा रही है, इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, और डाइवर्ट होगी ज्ञान, योग और धारणा से। डाइवर्ट करने की विधि है ज्ञान। ज्ञान अर्थात आए, मुरली सुनी और गए। साकार महावाक्य है बाबा के, आना, मुरली सुनना और जाना, यह है पुरानी चाल, कई समय से करते आ रहे हैं। आए, बैठे, दिखा, मीठे बच्चे, फिर लिखा प्रश्न, फिर लिखा उत्तर, फिर डायरी बाजू में, फिर मुरली सुनी और बीच बीच में नींद, और फिर एकदम से जाग, मीठे मीठे, फिर से डायरी ली, फिर से धारणा के लिए सार, पॉइंट टू, वरदान, स्लोगन, डायरी बंद, काम आज का पूरा हुआ, अभी चलो जो पहले चल रहा था वो चलने दो। हमने देखा कुछ कुछ माता सेंटर पर ही छोड़ के जाती है अपनी डायरिया टेबल के नीचे, काम पूरा, बाकी काम होते हैं ना, ये भी एक काम है, फटाफट किया पूरा, अब निश्चिंत। ज्ञान कितना गुह्य है, क्या ज्ञान की उस गुह्यता को समझा है, क्या 69 से लेकर अब तक की सारी अव्यक्त वाणियां पढ़कर, चिंतन करके, मनन कर हो गई है, जो हम समझ रहे हैं हमारे ज्ञान में चलने की परिभाषा अर्थात सेंटर पर दिखे, बस कोई कहे नहीं हमको क्यों नहीं आते, बस उसके लिए लोक का अपवाद, इस परिवार का कोई आके कह नहीं दिए कि तुमको माया ने खा लिया, इसका भी डर, एक रीति से अच्छी बात भी है, आ तो रहे हैं परंतु वही नहीं रुकना है, ज्ञान को समझना है। बाबा ने कहा एक एक ज्ञान महावाक्य है, एक एक रत्न की कीमत लाखों करोड़ों की है, तो क्या ज्ञान को इतनी गुह्यता से, इतनी गहराई से, इतनी आतुरता है इस ज्ञान को समझने की। दादी जानकी जब आई थी यज्ञ में और उसने कहा था कि बाबा मैं लेट हो गई, क्या करूं, मेरे से पहले कितने लोग आ गए, मैं क्या करूं कि सबसे आगे जाऊं, बाबा ने कहा मुरली 6 बार पढ़ो। दादी ने कहा था अगर मैं 24 बार पढ़ू तो ज्ञान केवल सुनना नहीं, समझना, धारण करना, उसकी डेप्थ में जाना, एक एक शब्द के अर्थ को सुनना, समझना, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, भावार्थ, सब कुछ समझना, क्यों कहा है उसने ऐसा, क्या गहराई है उसकी। तो ज्ञान और योग, योग भी उसके ऊपर चर्चा हम शाम को या कल करेंगे, योग को कैसे रमणीक बनाया जाए, क्या क्या नवीनता लाए, वही योग, मैं आत्मा हूं, 10 साल से जो कमेंट्री सुनी थी वही चालू है अब तक, उससे बाहर निकले ही नहीं अभी तक, अनुभव क्या हो रहा है पता नहीं, उसमें भी नींद का प्रकोप, भयंकर नींद, वैसे नहीं आती, अमृत वेला उठो उसके बाद में नींद आना चालू, तो क्या योग से शक्ति भरेगी। तीसरा सेवा, सेवा में स्वयं को व्यस्त कर दो, यह सबसे अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं हमारा योग में नींद आती है, मुरली में नींद आती है, इसलिए सेवा ही करते रहते हैं, वो भी अच्छा है, दुआएं मिलती है सभी आत्माओं की। तो डाइवर्ट करना है ज्ञान में, योग में और सेवाओं में। और चौथा है ट्रांसम्यूटेशन, कन्वर्ट, कन्वर्शन, इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, दिव्यकरण, पवित्रीकरण, इसको, उसका पाथ, उसको दिव्य बना देना, नहीं तो यह शक्ति नीचे बहेगी, इस बिंदु को रोक देना, यह बिंदु ही प्राण है, जीवन है, उसका बह जाना ही मृत्यु है, चाहे किसी भी कारण से। तो इसके लिए ये संपूर्ण जीवन की बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो धारणाएं बताई है, और ऊपर की तीन चीजें करो तो ये जो चौथी चीज है स्वतः ही होना आरंभ होगी, वो ऊर्जा बहने लगेगी, फिर शरीर में एक हल्कापन आएगा। विकार उसे भारी कर देते हैं। तो ब्रह्मचर्य के इस पथ में हमें आगे बढ़ना है। एक अंतिम छोटी सी कहानी, फिर इस सत्र को पूरा करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आएंगे। सूफी कहानी है कि जिसमें एक स्त्री होती है, वो किसी अपने गुरु की लगभग 30 साल तक सेवा करती है, परंतु उसे हमेशा लगता है यह गुरु जो है तो बहुत अच्छा, परंतु इसमें पवित्रता की धारणा की अब भी कमी है। जबकि सारा संसार उसे बहुत महान ही समझता है, अच्छे प्रवचन करता है, सब कुछ करता है, उपदेश देता है, परंतु उसके मन में ये बात हमेशा से ही रहती है कि ये ब्रह्मचर्य में अभी भी पक्का नहीं है। तो ये जो स्त्री जब मरणासन्न हो जाती है ऑन हर डेथ बेड, तब वो गांव की एक नवजवान स्त्री को पुलाती है और उसे कहती है कि मुझे अब भी विश्वास नहीं है इस व्यक्ति पर, थोड़ा सा संशय है, अभी तो मेरी मरने की स्थिति है, तुम एक काम करके जाना, आज रात को 12 बजे लगभग उसकी जो कुटिया है वहां पर जाकर खड़े हो जाना और फिर मुझे बताना क्या हुआ। तो वो स्त्री जिसका चरित्र इतना अच्छा नहीं है, ऐसी वो स्त्री थी, वो स्त्री वहां जाकर खड़ी हो जाती है और वो जो गुरु है उसे देखता ही क्रोधित हो जाता है, चिल्लाने लगता है, बाहर आता है और उसको बाहर कर देता है और उससे कहता है कि यहां से चली जाओ, मुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करता है और स्त्री वहां से चली जाती है। और फिर उस स्त्री को जाकर मिलती है जो कि मरणासन्न है और उसको कहती है कि उसने ऐसा ऐसा कहा। तो वो जो मरने वाली सेविका होती है वो कहती है मुझे पता ही था, इसे इसका ब्रह्मचर्य अब भी पूरा नहीं है। 2 भाग है, एक तो वो कि जिसमें अभी निगेटिविटी आ गई है, उनके पास ही नहीं रहना है, जो कि शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा है द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, वो भाव आ गया है और फिर ब्रह्मचर्य में स्थित है, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य दमन भी नहीं है तो ब्रह्मचर्य भोग भी नहीं है तो ब्रह्मचर्य नफरत भी नहीं है, ये तीनों ही चीजें नहीं है। परंतु आज तक मनुष्यता ने ये 3 ही मार्ग अपनाए हैं, एक तो भोग दुखी हुए, दूसरा त्याग उससे भी दुखी हुए, भागे उससे भी दुखी हुए। बाबा ने जो मार्ग बताया है वो 3रा मार्ग है और उसका नाम है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, वास्तविकता क्या है उसको समझना, तब कहीं ब्रह्मचर्य सरल सुगम होगा। तो ऐसे ब्रह्मचर्य का व्रत रोज बाबा के सामने अमृत वेला प्रतिज्ञा करनी है, रिवाइज करनी है रोज, स्वयं से प्रतिज्ञा और बाबा के सामने प्रतिज्ञा संपूर्ण पवित्रता की। यदि पवित्रता अखंडित है तो ये मार्ग सहज होगा, फिर कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी आ जाए, सुबह कहा ना दादी ने, मुश्किल बिचारी हो जाएगी, क्या क्यों संकल्प में भी नहीं आता है, क्यों 80 साल की तपस्या दादी की, 80 साल की योगिनी है, ऐसी अखंडित तपस्या हमें करनी है और वह बल वह शक्ति अपने अंदर भरनी है। ओम शांति।